विहीनापराधं चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिने दूतं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणम्
आज रामानुजाचार्य की आविर्भाव तिथि है। रामानुज शिष्य संप्रदाय के आचार्य हैं। जिस समय में दक्षिण भारत में या सर्वत्र मायावाद का खूब जोर से प्रचार प्रसार था, उसमें रामानुज पहले आचार्य हैं जिन्होंने मायावाद का खंडन करके भक्ति की स्थापना की थी। रामानुज के आचार्य के संन्यास गुरु जमुनाचार्य, किंतु उनके एक विद्या गुरु हैं और एक दीक्षा गुरु हैं, एक संन्यास गुरु हैं। विद्या गुरु कौन है? कौन थे जाद्वाचार्य? अद्वैतवाद की शिक्षा देते थे। उस समय बड़े बड़े आचार्य लोगों को भी अद्वैतवाद की, मायावाद की शिक्षा देते थे। जाद्वाचार्य जी से रामानुज का संबंध और दो एक विशेष बातें बतलाओ। कौन बतलाएगा? तुम बतलाएगा? जाद्वाचार्य, रामानुज आचार्य पानी, पासम जो पानी पीता है, पानी खींचता है, वो कौन है? सूर्य न? वो सूर्य से विकसित कौन चीज होता है? कमल। इसलिए कपि आसम माने कपि जो पानी लेता है, क माने सूर्य पानी को लेकर के, और फिर उसमें कमल को जो खिला देता है अपनी किरणों से उसके समान, तो वो कैसे? जो कमल है, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ये अर्थ लगाया। हाँ, पिबती माने उसे आकर्षण करता है, इसलिए वो सूर्य हुआ। सूर्य जिसको अपनी किरणें से खिलाता है वो हुआ कमल, कमल के समान नेत्र। सुनकर के बस दंग रह गया। दूसरी बात देखा, जिसे ये तो बड़ा भारी वैष्णव होगा, मायावाद का खंडन करेगा, इसलिए इसको जान से मरवा डालना चाहिए। मारने के लिए उन्होंने कहा, जैसे चलो हम जाएंगे बाहर में, काशी जाएंगे और हमारे साथ में तुम लोग चलो। तो इनको भी लिया और भी साथ में 10-15 को लिया जो उनके मायावादी लड़के थे। बीच में जंगल में जाकर के उनकी योजना थी इसे मार दिया जाए और कह दिया जाए इसे बाघ ने खा लिया, किंतु रामानुज के साथ में कुरेश था, गोविंद उनका मौसेरा भाई, उसमें वो भी था। और रात में जाकर के रामानुज को कहा, तुम इसी समय में चले जाओ अन्यथा तो तुमको ये मार डालेगा। तो उसने बस जट रामानुज रात में ही निकल रहे, वहां से बहुत दूर चले आए थे, रात में निकले, कोई रास्ता पता नहीं जंगल में। उसी समय लालटेन लिए हुए कोई आया वृद्ध आदमी और उनको लेकर के एकदम वो लेकर के उनको वेंकटाचल में जहां वो रहते थे वहां पर पहुंचा दिया। सवेरा होने जा रहा था उनको पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया। कहा जैसे अब तुम निकट में आ गए हो, और ये कह करके झट अंतर ध्यान हो गए लालटेन सहित। वो शंकर जी या कौन, बस अंतर ध्यान हो गए। जब वो सवेरा और बात, अरे ये तो मैं अपने ग्राम में पहुंच गया। इस तरह से भगवान ने उनकी रक्षा की। एक समय की बात है, रामानुज के जो गुरु थे उन्होंने कहा, देखो तुमको ये मंत्र देता हूं नारायण, तुम किसी से मत कहना इस मंत्र को, नहीं तो मंत्र की शक्ति हानि हो जाएगी। उन्होंने ये ठीक है, नहीं कहूंगा, ये कहा तो नहीं, किंतु गुरु जी का कहना उन्होंने सुन लिया, और उन्होंने नारायण मंत्र उनको दिए, और कहा जैसे यदि ये कोई मंत्र करता है तो सचमुच में कुछ दिनों के बाद में वैकुंठ उसकी प्राप्ति हो। ये ठीक, मंत्र लेकर के आए, और उस गांव के, उस शहर के बीच में एक मकान की छत पर खड़े हो गए, जहां से हजारों लोग, जैसे कि यहाँ पर होली गेट है, ऐसे खड़े हो गए और बोले, भाइयों तुम लोग जो मंत्र उच्चारण करता हूँ उसको करो, और तुम लोगों को वैकुंठ की गति होगी, और इसको घर में जाप करना। हजारों लोग जो आ रहे थे सबको सुना सुना करके उस मंत्र को वो बोलने लगे। गुरु जी ने सुना, गुरु जी दौड़े ही आए, तू ये क्या कर रहा है, तो ये मंत्र की शक्ति हानि करके जो कर रहा है, इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। उन्होंने, गुरु जी मैं नरक में जाना चाहता हूँ कि तो लाखों लोगों का कल्याण करके जाऊंगा। बस गुरु जी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा जे तू यथार्थ में आचार्य है। जिस समय में वो शिक्षा प्राप्त कर लिए और स्कूल अपना खोल दिया, उसमें में जमुनाचार्य के एक गुरु भाई थे, वो शुद्र जाति के थे, शैलपूर्ण, वो नीचे जाति के थे, किंतु उन्होंने शास्त्र में सुना था, देखा था, जो कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई क्यों ना हो, कृष्ण का भजन करने वाला, कृष्ण तत्व को जानने वाला ही गुरु है, कि वह विप्र कि वह शूद्र, नासी के वह शूद्र, जय कृष्ण तत्वता, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है। इसे किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, कृष्ण तत्व को जानने वाला, जाति से ऊपर हो जाता है, उसको गुरु बनाओ। ब्राह्मण यदि समस्त शास्त्रों को जानता है, उसकी उपलब्धि नहीं है, भजन खुद नहीं करता, मत गुरु बनाओ। शूद्र यदि भजन करता है और सत्व जानता है, उसको गुरु बना सकता, उससे कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने उनको, शैल को अपना गुरु बना लिया। जमुनाचार्य के गुरु भाई या उनके शिष्य थे। इसके बाद में घर में उनकी रोज पूजा करते, वो अपनी स्त्री के साथ में इनके पास में आकर के रहने लगे, उनको रहने का स्थान भी दे दिया, और सारी व्यवस्था ये करते थे, और स्कूल में पढ़ाते थे संस्कृत। एक दिन उनकी पत्नी पहले से ही जली भुनी हुई थी, इसलिए जब पानी भर रही थी तो उस शैलपूर्ण की स्त्री भी पानी भर रही, और उसमें पानी का घड़ा इसका ऊपर आया, उसमें से उछल करके पानी जमुनाचार्य के स्त्री के घड़े में पड़ गया। बड़ी बिगड़ी, पानी तो फेंक ही दिया, और उनको दो चार दस बातें खूब सुना दी। शुद्रानी होकर के आती है हम लोगों के यहाँ, लज्जा नहीं आती है, खबरदार यहाँ पर कुएं में पानी भरने आई। उसको डांट फटकार दिया, वो रोती हुई गई शैलपूर्ण के यहाँ। कही शैलपूर्ण ने कहा जी अब हम लोगों के यहाँ रहना उचित नहीं है, रामानुज तो आदर करते हैं किंतु ये बड़ी द्वेष बुद्धि रखती है। बस वो चले गए। चले गए तो इन्होंने सोचा जी ऐसी स्त्री के साथ में रहना अब हमारा असंभव है, जो गुरु को भी सम्मान नहीं देता, हमारा पारमार्थिक जीवन पहले है, इसके बाद में संसारिक जीवन। बस उन्होंने बहाना बना करके क्या किया, उसी समय एक और घटना हो गई। एक ब्राह्मण आया रामानुज के यहाँ स्कूल में, मैं आपके पास में आया हूँ, मैं भोजन नहीं किया कुछ दिनों से, मैं भोजन चाहता हूँ। उन्होंने आप काज से जाओ हमारे घर में, भोजन बना हुआ होगा, हमारी स्त्री से मांग करके खा लेना। उन्होंने संदेश भी दिया ये जा रहा है ब्राह्मण, इसको खिला देना, किंतु उस ब्राह्मण को उसने दूतकार करके भगा दिया, नहीं खिलाया। जब हुआ था तो ये और कुछ भीतर में उनकी चिंता हुई, ये तो भगवत भजन के बाद विरोध कर रही है। साथ ही साथ एक दूसरे ब्राह्मण को बुला कि उसी ब्राह्मण को, और कहा जे देखो तुमको पत्र देता हूँ, ये पत्र लेकर के उसके पास में जाओ, उन्होंने पत्र लिखा, बहन मैं तुम्हारा भैया पत्र दे रहा हूं, या बाप की तरफ से लिखा, हमारे बेटे की शादी है, तुम जल्दी से आ जाओ मेरी बेटी, और इसके साथ में ब्राह्मण से ये न्योता भेज रहा हूं। रामानुज ने अपने हाथों से वैसा पत्र लिख करके नारियल और चिट्ठी में हल्दी देकर और दूर्वाभास देकर उसे बांध करके जैसा होता है निमंत्रण, और निमंत्रण के साथ में उसी ब्राह्मण को कहा जाओ हमारी गृहिणी को दे दो। तो वो लेकर के गया, तो जे कहां से आ रहे हो, तो उसने उसके पीहर का नाम बतलाया, ये तुम्हारे बाप के यहां से आ रहे हैं। अच्छा, बस उसको बड़े पलंग पर अच्छी तरह से बैठा करके, पैर धो करके, उसकी पूजा करके, उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, और वो चिट्ठी खोल करके देखी तो बड़ी खुश हो गई, हमारे भैया ने और पिताजी ने बुलाया है। बड़ी खुश होकर के रामानुज की प्रतीक्षा करने लगी, और इनको खिला पिला करके वो भेज दिया। जब रामानुज लौट करके आए तो बड़ी प्रसन्न होकर के आज उनको प्रणाम भी किए, और बोली जैसे हमारे भैये की शादी है इसलिए आप और हम दोनों चले, और जी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विवाह के दिन आ जाऊंगा, तुम आज चली जाओ, तो मैं अपने किसी को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ में, तुम जाओ और वहां पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ रहा हूँ। ये कह करके उसको तो भेज दिया ससुराल, और उसी दिन सवेरे उठ करके घर संसार सब छोड़ दिया, और छोड़ करके चल पड़े श्रीरंगम में चले, जहां उनके गुरु जी थे, कौन, जमुनाचार्य। जमुनाचार्य ही उनके असल गुरु हैं, उनके पास में जाना चाहते थे संन्यास के लिए। जब वहां पर पहुंचे, जब श्रीरंगम में, तो देखा क्या, सब लोग विमान पर अप्रकट हो गए हैं, शरीर छोड़ दिए हैं उनके गुरुजी, और उनको लेकर के हजारों आदमी चले जा रहे हैं समाधि देने के लिए। इतने में रामानुज आए, रामानुज रोने लगे, जैसे मैं इनसे संन्यास लेने के लिए आज घर छोड़ करके आया, और गुरुजी हमको कितनी बार बुलाए थे कि तुम आ जाओ, मैं नहीं गया, और आज आया तो ये छोड़ करके चले गए। रोने लगे, कहा जी भाई हमको दर्शन तो करा दो। तब उनको नीचे उतारा गया और मट्टी पर रखा गया, उनके कपड़े थोड़े से हटा दिए गए, उन्होंने दर्शन किए। दर्शन दे करके उन्होंने देखा जो उनके हाथ की उंगलियां तीन ऐसी हैं, बंद है, इधर तो ठीक है किंतु तीन उंगली उनकी ऐसी है, बंद है। नहीं जैसा क्यों, तो कोई नहीं बतला सका। तो उसी भरी सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं जमुनाचार्य जी से संन्यास ले रहा हूं। बस साथ ही साथ एक खुल गई, उन्होंने कहा मैं अपने रीति के अनुसार में अपने पूर्व जो हमारे गुरु लोग हैं, भक्ति का प्रचार किया सर्वत्र, मैं इस भक्ति का आचार और विचार का प्रचार करूंगा। बस साथ ही साथ ही भी खुल गया, मैं ब्रह्मसूत्र के ऊपर में एक वैष्णव अपने पूर्व आचार्य के अनुसार में एक भाष्य लिखूंगा, जो उपनिषद वेद इत्यादि के से समर्थित होंगे प्रमाण के अनुसार में, और हमारे सब संप्रदाय में वो पूज्य होगा, मान्य होगा। बस साथ ये भी अंग लोग देख करके आवाक रह गई, इसीलिए ये इनको यहां आए और इनकी अर्थी रखी गई, और इनकी हम लोग सोच रहे थे जी ऐसा कैसे हो गया, ये यथार्थ शिष्य है। बस उसी समय वहीं पर उन्होंने संन्यास लिया उनके सामने ही, और संन्यास लेकर के तब फिर वो गए श्रीरंगम में। इसके बाद में उनके बहुत से शिष्य थे, बड़े बड़े धुरंधर, कम से कम तो 20-25 बहुत बड़े बड़े विद्वान, वो अपना अहंकार छोड़ करके, विद्वान तो थे ही किंतु विद्या का अहंकार सब कुछ छोड़ करके, एक एक शिष्य के पास में दो दो महीने, चार चार महीने, दस दस महीने रह करके उनकी सेवा की, और उनसे जो रामा जमुनाचार्य से उन्होंने सुना था सबको उन्होंने संकलन किया, सुना और सुन करके उसमें हृदय धारण किया, बहुतों के घर में सेवा की। इस तरह होने के बाद में तब वो आचार्य पर पद पर प्रतिष्ठित हुए, बिना गुरु भाइयों के, जो उन्होंने सुना है। यदि कोई नहीं सुनता है गुरु भाइयों से, शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से, इनको तो दीक्षा गुरु से सुनने का समय नहीं मिला, अपने गुरु भाइयों से सुने, अहंकार छोड़ करके और सब छोड़ करके उनसे सीख करके तब फिर आचार्य हुए। एक समय की बात है कि एक कौन सा धंधा और एक था, एक और भी कुरेश की भी बात, धुनधर की भी बात, बहुत सी बातें तो अब सुनाने से यह रह जाएगा, वो तो बहुत बात तुम लोगों ने सुना है। कुरेश ने उनके लिए जान दे दी, आंखें गमा दी और उनकी कृपा से फिर आंखें लौट आई। एक स्त्री उनके लिए रामानुज की सेवा करने के लिए अपने सतीत्व को भी हाथ में, मैंने उसको छोड़ने की चेष्टा की और उसका भी सतीत्व रह गया और वो जो बदमाश था वो उनका रामानुज का शिष्य बन गया। इस तरह से रामानुज में बहुत बहुत सब आश्चर्य बातें हैं, इनकी बहुत सी शिक्षाएं हैं, हम लोग किस लिए पालन करते हैं आज, किस लिए उनका ये विचार किया। रामानुज में बहुत से आचार विचार हैं जिसको हमारे प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने उसको ग्रहण किया है। जिस प्रकार से सहिष्णु थे, किस प्रकार से अपने जान दे करके भी अपने संप्रदाय के विचारों में, सिद्धांतों में उनकी निष्ठा थी। उन्होंने गुरु और शिष्य के संबंध में बतलाया है, गुरु उच्च कुल का होना चाहिए, शिष्य भी कैसा होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए। गुरु को जैसे सहिष्णु है, शिष्य भी वैसे सहिष्णु हो। गुरु जी से पहले उठे और गुरु जी विश्राम करने के लिए जब रात में जब जाएं, उसके बाद में उनको सुला पिला करके सारी व्यवस्था करके तब सोए, और जो साधन भजन है पूरी ठीक से करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सहिष्णु से रहे, तीर्णादपि सुनीच हो। उनके करके 40 ऐसे उपदेश हैं जो हमने पत्रिका में, भागवत पत्रिका में दिया था, जिसको प्रभुपाद ने संकलन किया था। आज के दिन में हम लोग उनके जीवन चरित्र को सुन करके वैसे ही बनने की चेष्टा करेंगे तो सुदर्शन तो हमारे हृदय में और भक्ति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए रामानुज का कभी, मध्वाचार्य का कभी, कभी रघुनाथ दास गोस्वामी का, कभी स्वरूप दामोदर की, ये सब हम लोग कथाएं कहते हैं उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए, दूसरों को सिखलाने के लिए नहीं, अपने जीवन में पालन करने के लिए, तब तो भक्ति होगी, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। इसलिए रामानुज का आदर्श जो हमारे लिए ग्रहणीय है, जहां तक दार्शनिक विचार इत्यादि हैं, आचार विचार है, इसको हम ग्रहण करें। और उपासना क्षेत्र में हम महाप्रभु जी के विचारों को, रूप गोस्वामी के विचारों को ग्रहण करें। इस प्रकार से आज रामानुज आचार्य का यही, यह रामानुज माने लक्ष्मण के अवतार हैं, साधारण नहीं है। अभी शायद आज से नव दुर्गा का, या कब से आरंभ हो गया है नव दुर्गा, ना कब से, बहुत दिन हो गए, तीन चार दिन नव दुर्गा। हमने ये पूछा एक आदमी से जो नव दुर्गा कर रहे थे, भाई नव दुर्गा में आज दुर्गा जी का जन्म है, न विवाह का दिन है, न क्या है आज उनका, किस लिए नव दुर्गा है, कहीं भी तो शास्त्र में होना चाहिए, कहीं भी शास्त्र में नहीं है नव दुर्गा का, ना जाने कहां से ये आफत आ गई, लोगों समझाने पर भी नहीं समझेंगे, किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है नव दुर्गे का। इस समय में और रामचंद्र जी जबकि बन नमिषा वहां से जा रहे हैं ना, गोदावरी के तट से जा रहे हैं लंका पे विजय करने के लिए, विजयादशमी, ना जाने वहां से कहां टपक पड़ती है। दुर्गा जी का जो स्थान है वो तो ठीक है, दुर्गा जी का विचार हमारे शास्त्रों में लिखा है, उनकी उपासना की भी बात है, जो कामी पुरुष होंगे, जो संसारिक कामनाएं जिनके अंदर में होगी वो लोग पूजा करेंगे, और पूजा करके कामनाओं को पा करके उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स माने क्या, संसारिक, ये सब और बढ़ जाएंगे। उन्होंने 3 पुत्र दिया, पुत्र मांगा देवी से और उन्होंने दिया, और तीनों पुत्र धुंधकारी होंगे, तीनों में कोई भी नहीं माता पिता की सेवा करेगा, तो अभी देवी की पूजा करें। अरे कृष्ण की राधा जी हुई तो दुर्गा जी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक छाया है माया और एक है काया माया। काया माया माने जोग माया, जोग माया की भी मूल राधिका जी है। राधिका जी की पूजा करने से छाया इत्यादि सबकी पूजा हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता। रामचंद्र जी का जन्म यह नवमी को हुआ, तो नवमी के लिए नौ दुर्गा एक से लेकर के नौ नौम तिथि तक तो ये नौ दुर्गा मनाने लगे। कौन? जिनको संसारी कामनाएं वासनाएं हैं। क्यों हुआ? बंगाल में कोई थे दुर्गा के पूजा करने वाले शक्ति की प्रतिभा, उसने एक रामायण लिख दिया नया और उसमें लिख दिया रामचंद्र जी ने उसकी पूजा की थी। किस लिए? लोग तो मूर्ख होते हैं साधारण रूप में, भेड़िया धासान की तरफ में एक भेड़ को फेंक दिया उधर में तो सभी भेड़े चलेगी। वैसे ही लोग जो हैं हम ये लिख देंगे रामचंद्र जी ने दुर्गा जी की पूजा की। कैसे पूजा की? 108 कमल रामचंद्र जी लाए और रोज एक कमल से उनकी पूजा करेंगे। पूजा करते करते अंतिम दिन में देवी जी ने उसको चुरा लिया एक को, अब एक ही कमल बाकी था और एक ही दिन की पूजा बाकी। जब चुरा लिया तो रामचंद्र जी देख रहे हैं कि फूल कहाँ गया और दुर्गा जी के पूजा में देरी होगी। उन्होंने अपना कमल नयन है कमल के समान, इसलिए उसने अपने बाण से उसको निकालने की चेष्टा की और उसी से पूजा करेंगे। इतने में दुर्गा जी ने कहा जिसे मैं प्रसन्न हो गई तुम वर मानो। कल्पना, ये एक शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। कृतवासी ने ऐसे झूठ मूठ को लगा दिया और लोगों ने कहा वाह यही तो रामायण असली है, वाल्मीकि वाला तो रामायण है ही नहीं, यही असली। बस दुर्गा जी की पूजा आज से अढ़ाई सौ वर्ष पहले आरंभ हुई और सारे संसार में जहां जहां बंगाली हैं वो धीरे धीरे पूजा करना आरंभ किया और करते 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 वहां पर भी वैसे ही वो सुअर की बलि देते हैं, बकरी की बलि देते हैं, अपने बेटे की तो बलि नहीं देते बलि देकर के पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं। राधा जी की यदि पूजा होगी कृष्ण की तो अपने आप सबकी। इस समय रामायण पाठ करना चाहिए, वाल्मीकि रामायण है या तुलसी कृत भी करें वो कोई भी बात नहीं है। तब तो हो नौ दिन दुर्गा जी की पूजा कहां से ले आए? अरे दुर्गा जी की पूजा करो, धन पूजा के लिए कृष्ण ने भी भागवत में बतलाया है दुर्गा जी की पूजा अपने स्थान पर होगी, किंतु लोगों के समझ में नहीं आया। यदि सुख चाहो जीवन में तो वहां पर किसकी पूजा करो? सीता जी की, रामचंद्र जी की पूजा करो, राधा और कृष्ण की पूजा करो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और उसकी पूजा करो, ये तो असल पूजा है। लोगों के समझ में ये सब चीजें नहीं आती। तो आप लोग यदि नव दुर्गा का करना है तो राधा जी की पूजा करो और कृष्ण की, और पढ़ना है तो दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ करके श्रीमद भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचंद्र जी का रामचरितमानस पढ़ो, उत्तरकांड वाला पढ़ो, सुंदरकांड का पढ़ो, सुंदरकांड मत पढ़ो उत्तरकांड पढ़ो। वो कामना बसना लगा लेते हैं उसमें जो मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, हमको सुंदर सी काली दांत बाहर वाली हमको स्त्री मिल जाएगी, हमारे पति बूढ़ा आ जाए, ऐसे ऐसे सब कामनाओं के लिए लोग करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हो ऐसी उपासना होनी चाहिए जिससे कि और कोई भी जीवन में दुख न आए। प्रातः ब्रजात ब्रजत अविशत सायं गोभी समं कड़यतो निशम्यबेन निर्गृत्य तूर्णम अबलापति भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयापलोकम। कल हमने बतलाया था, ये पहले मिलन के संबंध में बतलाया और कृष्ण के गोचारण चले जाने के बाद में उसके लिए ये बतला रहे हैं। यहां किस प्रकार से सवेरे कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं और गोपियां क्या करती हैं, उसके पहले चालाकी चतुराई से अपने पति को सास को ठग कर जावट से आती हैं कहां? नंद भवन। किस लिए? मानो जसोदा जी को बहुत आग्रह है बुलाने का, जसोदा जी के रसोई बनाने से कृष्ण की तृप्ति नहीं होती और उनमें शक्ति नहीं आती, दुबले पतले हो रहे हैं। इसलिए मानो जसोदा जी को लाख गरज है, इसलिए बुला रहे। इन गोपियों को जाने की इच्छा नहीं। हम लोग अपने पति के घर को, सास को छोड़कर के हम दूसरे के घर में नहीं जाती, कौन कह रहा है? ये गोपियां कहती हैं, राधा जी कहती हैं। किंतु भीतर से इच्छा क्या है? कब जाए, कब जाए, कब जाए? किंतु ऊपर से कहती है हम नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जब उनकी सास उनके पैरों में नाक रगड़ती है जे नहीं, तुम नहीं जाने से जसोदा जी का माल जो है वो नहीं आएगा घर पर, उनके अलंकार और वस्त्र जो दे रहे हैं ये नहीं मिलेगा, और हमारी सारी गैया मर जाएंगी और हमारा बेटा भी मर जाएगा, जोग माया ने कहा है, इसलिए उसको भेजना जरूरी है। इसलिए बार बार आग्रह करके उसे भेज रही है और ये वहां पर जाती है। रसोई बनाना तो एक बहाना है, वो तो रोहिणी मैया भी बना देंगी, और उसी के बहाने में कृष्ण का दर्शन करती हैं, उनसे मिलन भी होता है। इसके बाद में जबकि खाने पीने बैठते हैं तभी आंखों से मिलन होता है। इसके बाद में कृष्ण जब वन में जानते हैं तो शेष सीमा तक ये वहां तक भी जाती हैं, फिर लौट आती हैं। लौट आने के बाद में माला गुथना इत्यादि, घर का काम करना और सूर्य पूजा के लिए फिर निकल जाती हैं, ये भी बहाना बनाकर, और कृष्ण से मिलती हैं। फिर कृष्ण के गोचारण से लौटने के पहले ही अपने घरों में लौट आती हैं, और लौट करके फिर जब कृष्ण बंसी वादन करके जबकि ब्रज में आते हैं, आविशतश्च सायं, सायंकाल में जब आविशतम जबकि ब्रज में प्रवेश करते हैं उसमें फिर ये खड़ी हो जाती हैं। इसमें उनका विरह कब हुआ? विरह कब हुआ? आने जाने के समय में या घरों में कभी कभी वो बैठ करके उसमें भी वेणु गीत जैसे संवाद उनके होते हैं, और उसके महाने में कृष्ण की स्फूर्ति होती है जो मिलन से भी अपूर्व, उसमें रसानंद होता है, उसका आस्वादन ये करते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं अंत में, इसकी व्याख्या हमने कल की थी, कहते हैं कि जैसे यदि हो सकता है ये ब्रजवासियां, ब्रज की रमणियां कृष्ण को प्रकट उनके मिलने में और विराट दोनों में जो उनसे मिलती हैं उनका जो आनंद और सुख होता है, मान लिया जैसे कृष्ण कंस को मारा और कंस को मारने के बाद में इनके माता पिता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, इन सबको ये दृढ़ धारणा है, और वसुदेव जी ने इस बचाने के लिए वो केवल दे आए थे गोकुल में, इसलिए कृष्ण का यहां रहना संभव है, जो रहेंगे जरूर, और इनके कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव, या जब पुतना को, अगासुर को, बकासुर को ये सब मारा, आज कृष्ण भी आज ही मारेंगे इसको जरूर। कैसे मालूम? जब उन छोटे होकर के भी असुरों से युद्ध कर रहे हैं और होकर के पीछे जब ठेलते हैं तो बहुत दूर तक अखाड़े के बाहर में उसको ठेल देते हैं, और उस समय में रोष से वो अपने दांतों से अपने अधर को दबा करके रोष कर, इधर जबकि दूसरों पर भक्तों पर देखते हैं सखाओं के प्रति या इन ब्रजवासियों के प्रति नंदवा, उस समय क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं। इसे देकर के कह रही हैं कि हो सकता है कि पीछे कृष्ण से हम लोगों का मिलन हो, कृष्णों को देखेंगी, किंतु यह तो नहीं देख सकें। गोपियों को कितना आनंद होता, हम लोगों को आनंद होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? इस बात को समझ रही हैं, उनके अंदर में ऐसा प्रेम है जो उस प्रेम के द्वारा कृष्ण के इन चीजों का, रूप का और सब बातों का आस्वादन करती हैं, हमारे अंदर में वो नहीं है। हम अपने सास और ससुर के डर से घर से निकल नहीं सकेंगी, अपने पति के डर से निकल नहीं सकेंगी, मेरे लिए हम लोगों के लिए संभव नहीं, इसलिए ये कदापि उनके जैसा नहीं होगा। होगा हमें आनंद कृष्ण से मिलकर के, किंतु ऐसी अभिव्यक्ति पार्थिव भाव से जो गोपियों की है हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रही हैं कि गोपियां ही पुण्यवती हैं। भूरि पुण्य यद्यपि दिवा दिरस दुख में वो विकल हैं, कब जब वो गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, कुबुंदनी की भांति मृतवत हो जाती हैं, किंतु सायंकाल को अब फिर जबकि आते हैं अभिशत तो सायं खिल जाता है उनका मुख। अपने अपने घर में अवस्थान करने पर भी कृष्ण जब आते हैं अटारियों से झरोखों से कुंजों से कृष्ण का वो दर्शन करते हैं। उस समय में वो घर से निकलती हैं, क्यों निकलती हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए गोपियां, उनको अबला किस लिए कहा, अबला का ये अर्थ बतला रहे हैं। अबला किस लिए, अबला उसको कहा जाता है जो किसी काम करने में असमर्थ है उसको कहते हैं अबला, जिसको बल नहीं है। गोपियां ये बतला रही हैं ये गोपियां वनगमन के समय तक कृष्ण के दर्शन करने के लिए वहां जाती हैं। इस प्रकार से प्रातःकाल और सायंकाल कृष्ण के दर्शन का अवसर प्राप्त होकर के ये अबलागन, अबलागन मैंने अपने ये निकल नहीं गए, निकलती नहीं है, इसलिए अबला अपने धर्म की हानि से कृष्ण से नहीं मिल सकती, इसमें असहाय है। किंतु ऐसा होने पर भी जब कृष्ण की बंसी बजती है और आकाश में धूल उठती है तो रुकने क्यों नहीं रुक पाती, रुकने का बल उनमें नहीं है। क्यों, बंसी ने उनके अंदर में आकर के उसके इस बल को हटा दिया, इसलिए निर्बल की भांति अपने आप खींची हुई चली जाती हैं, अपने को वो रोक नहीं पाती हैं, इसलिए इनको अबला कहा गया। अथवा बेनुनार श्रवण करके काम वेग से बलहीना कृष्ण से मिलने के लिए उत्तावली हो जाती हैं, अपने को रोक नहीं पाती हैं, इसलिए अबला, चेष्टा करने पर भी नहीं रोक पाती, इसलिए अबला शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। यद्यपि विच्छेद में भी तादृश भगवान महाप्रसाद उदय हुआ था, विच्छेद में भी गोपियों को या ब्रजवासियों को एक विरह में इतना आनंद उनको होता है जो समस्त आनंदों के सिर पर भी चढ़ करके वो नृत्य करता है वो आनंद, किंतु इसकी अनुभूति दूसरों को नहीं होती, ये स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य माने क्या है, गोपी दूसरा कोई नहीं जान सकता, यहां तक कि कृष्ण भी उस आनंद को नहीं जान सकते हैं, इसलिए इतना स्वसंवेद्य है। इसलिए वो कहते हैं किंतु वही ब्रज सुंदरियों के अनुभव गम्य है, स्वसंवेद्य है, दूसरा नहीं जान सकता। बल्कि दूसरा क्या कहता है, उद्धव कहते हैं वह गोपियों की इतनी प्रियतमा ये गोपियां हैं और इतना दुख भोग रही हैं, दिन रात रोती हैं, तड़पती हैं, स्नान नहीं कर पाती, भोजन नहीं कर पाती हैं, हम यहां नहीं रहेंगे, रहेंगे तो हमारी भी दुर्दशा ऐसे ही नहीं हो जाए, इसलिए चले गए मथुरा लौट गए। जब उद्धव की यह दशा है, जो उद्धव समझते हैं कि कृष्ण प्रेम की चरम सीमा है और उसको ले नहीं सके, लौट गए, तो दूसरे आदमी कहते हैं कि गोपियां तो बड़ी दुखी थी, विकल थी, इसलिए उनके उनके चरणों में अपराध हो जाने का डर है, इसलिए दूसरे समझ नहीं पाते, इसलिए लोग गोपियों की निंदा करते हैं जो नहीं समझ पाते, इसलिए कृष्ण उसको छिपा करके रखते हैं, इसलिए गोपियां स्वसंवेद्य इस भाव को गोपियां ही समझेंगी। विशेषता विरह की दशा जब उत्पन्न होती है, ब्रज बालाओं के असाधारण महात्मा व्यंजक भाव उसमें व्यंग रहता है, क्या कृष्ण के प्रति गोपियों के जो भाव हैं बहुत ऊंचे चले जाते हैं। और इसमें बहुत सारा जगह दिखलाया गया है कि कृष्ण के विरह में गोपियों के कृष्ण के प्रति कैसे भाव होते हैं, किंतु यह नहीं दिखलाया गया, पीछे दिखलाया जाएगा इसके बाद के श्लोकों से। कृष्ण का गोपियों के विरह में गोपियों के प्रति उनका क्या भाव है, ये दो भाव समझो, यहां इस भाव को दिखला रहे हैं। क्या मिलन में और विरह में गोपियों का क्या भाव होता है कृष्ण के प्रति, किंतु इसको बतलाया स्वसंवेद्य, उसमें जो आनंद है, आनंद की अनुभूति, वो भजन के अतिरिक्त ऐसे नहीं समझ में सकते हम, नहीं समझ सकते। एक आदमी रो रहा है, उसका बेटा आया बहुत दिनों के बाद में परदेश से, किसी का पति आया बहुत दिनों के बाद में परदेश से, उसको बहुत प्यार करती है, उसको देख करके रोती है, क्यों? आनंद में रोने की क्या जरूरत? ये दूसरे को नहीं समझाया जा सकता। तो इसी को कह रहे हैं गोपियों के भाव को समझाना बड़ा भारी कठिन है। यद्यपि परम रहस्य हेतु महादुर्वितर्क के माने तर्क के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता, इस भाव को, यही भक्ति का भाव है। ये बिना भजन के सुनने से भी नहीं होगा, जो बहुत सुन रहा है वो कैसे होगा, कुछ सुनेगा कुछ भजन करेगा तब ये आएगा। इसलिए चेतनता की उपलब्धि नहीं होती। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि देखो इसके आगे अब मत पूछो, नहीं समझ सके, भजन करो तब गुरु जी के बातों को तुम समझ सकेगा, नहीं तो तुम समझे गुरु जी साधारण बातें कह रहे हैं, हम इसको खूब अच्छी तरह से इसे भी अधिक समझ लेंगे। इसलिए चिन्मय विषय में कृष्ण की लीलाओं के संबंध में ये सब अवितर्क भाव है, गोपियों के प्रेम या प्रेम साधारण प्रेम भी अवितर्क है, उसको साधन के द्वारा समझने की चेष्टा करो। जैसे गोपाल मंत्र को जप करके और गोपी भाव को प्राप्त करके ये वेद की ऋचाएं गोपी बनी, कैसे समझ लेगा? जरा करो तो भजन, वैसे भजन करके अनुभूति करो, ऐसे नहीं लाख जन्म में ऐसे नहीं समझेगा, सुनने से न रुचि आएगी, इस तरह से समझो। महादुर्वितर्क कहने से पुरी स्त्रीगण तहा दर्शन व दस वर्णन के ही कामना कर, गोपियों के इन भावों को जो विरह की बात बतलाई, गोपियां उनके पीछे दौड़ती हैं बंसी की ध्वनि सुनकर, बस ये वर्णन ही उसके लिए करती हैं, या वैसा दर्शन चाहती हैं, वो भाव नहीं चाह सकती अभी, बहुत कठिन। वैसे भाव आना भी, उद्धव तो उनका संग की आ गया, उन्हें कृष्ण के प्रति सखाओं का भाव भी आया नहीं, आया वात्सल्य आया, सब तो सुना देखा, गोपियों के साथ में बहुत दिन रहे, गोपियों का भाव आया नहीं, आया आने की संभावना भी नहीं। ये तो महाप्रभु जी की जिस पर कृपा है, या उनके गण रूप रघुनाथ इत्यादि की जो कृपा होगी उनका संग करेंगे, उन्हीं के लिए संभव है। इसलिए केवल वो वर्णन मुख से कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये पतिभूर पुण्य, बस यहीं तक, बहुत पुण्यवती हैं। तबे जे राजक्रीड़ा इत्यादि परम सौभाग्य, राजक्रीड़ा इत्यादि का ये सब का वर्णन नहीं किया, क्यों नहीं किया? हमारे अधिकार के बहुत ऊपर की बातें हैं, उसका ये केवल वर्णन भी नहीं कर सकी, असमर्थ हैं वो। से राजक्रीड़ा आदि परम सौभाग्य, वैसा सौभाग्य की जो गोपियों जैसा हम भी रास में जाकर के कृष्ण की सेवा करेंगी, उनके साथ में नित्य करेंगे, ये उनके लिए सोचना बहुत बहुत दूर की बात। ये केवल महाप्रभु के गण ही सोच सकते हैं, इसलिए वर्णन नहीं किया। बस उनके साथ में कुछ आना और जाने का ही वर्णन किया, रासलीला इत्यादि का वर्णन नहीं किया। गोपियों का सौभाग्य पुरुष स्त्री गणों के मन का भाव यह है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा दर्शन भी, इसके लिए भी संभावना नहीं है दर्शन करने की। गोपियों ने कृष्ण को जिस रूप में दर्शन किया और गोपियों के भावों को वर्णन और दर्शन करने के भी सौभाग्य हम लोगों का नहीं है, इसलिए हम लोग अल्प पुण्य, वो है क्या, भूरि पुण्य, और ये है इन सब चीजों को भजन के द्वारा समझने की चेष्टा। इसलिए भागवत में जिन चीजों का ये सब का वर्णन किया गया है बहुत उन्नतम चीज है। हम लोगों का उद्देश्य जीवन का यही होना चाहिए, इन सब चीजों की कैसे थोड़ी सी भी उपलब्धि हो, और ये होगा भजन और सेवा के द्वारा। यदि गुरु वैष्णव या भगवान वैसे हो और उनकी कृपा हो तो हम समझ सकते हैं, अन्यथा समझना बड़ा भारी कठिन है। गौर प्रमाण लो।